ये जो रूप उनको हुआ वो क्योंकि तार और भाग से भ्रम करके चिंता भावना जो हुआ जो यही हमारे भक्ति का था इस भक्ति का राधा अनुराग भक्ति का ये कार्य है। यदि भागवत श्रीमद भागवतम और हमारे गोस्वामियों के धर्म रूप गोस्वामी के धर्म जीव गोस्वामी के धर्म कृष्णदास व्यास गोस्वामी और नाथदास गोस्वामी के धर्म वो पढ़ करके और उनको सुन करके यदि ऐसा हमारा
रोग उत्पन्न नहीं होता है साधन भक्ति का जो नौभा भक्ति है श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाठ सुवरण अर्चन वंदनम दर्शन सत्य और उससे भी श्रेष्ठ जो पंचधा भक्ति है साधु संग्राम कीर्तन भागवत मथुरा राष्ट्रीय श्रद्धा सर्व साधन श्रेष्ठ एक अनुचन का कृष्ण प्रेम जन्म एक साधु साधु संघ और साधु संघ में नाम कीर्तन और भागवत का श्रवण करना और श्री विग्रह का सेवन करना और तीर्थों में बात ये पांच अंग और प्रधान है जिसमें साधु संघ सर्वश्रेष्ठ है। इसी के अधीन में ही साधु भजन करने से अवश्य ही कृष्ण का प्रेम होगा जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि नारद संत संदन संत कुमार प्रहलाद इत्यादि ढूंढते हैं उस प्रेम को उनको कायम किया और सब ही प्राप्त हो सकता है। किंतु हम लोग इस चीज को समझते नहीं हैं कि साधु संग क्या चीज है किसको हम उपलब्धि नहीं कर पाते। जिस समय उपलब्धि होगी कब उपलब्धि होगी कृष्ण प्रेम कितना दुर्लभ है इनके संग से पाया जाता है तो साधु संघ की महिमा समझ में आएगी। हम लोग साधु संघ की महिमा कुछ कुछ समझ रहे हैं कुछ कुछ इसलिए साधु संघ खोजते चुके हैं। जब वो नहीं मिलता है साधारण लोगों में भी भक्ति का कुछ संचार कर अनुकूल बनाकर श्रोता के रूप में या जिस रूप में हम लोग कुछ हरी कथा करते हैं। एक संत महाराज जी कह रहे थे प्रभुपाद के लोग कहते हैं कि हमने बहुत शिष्य बनाए हमने एक भी शिष्य नहीं बनाया। मैं सच्चे हृदय से कहता हूँ हम एक परिवेश बना रहे हैं परिवेश मैंने क्या वातावरण बना रहे हैं जिसमें कुछ हरी कथा की आलोचना हो हम कहें तो वो लोग सुने। सुनने के वाले भी जगत में नहीं है बहुत कम हैं बिरले हैं इसलिए कह रहा हूँ मैं सेवक किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता। मैं जानता हूँ कि गुरु के योग्य नहीं यही गुरु को समझना चाहिए। मध्यम अधिकारी वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि यथार्थ गुरु नारद जी हैं या उसके समकक्ष हैं रूप सनातन जी ये गुरु हैं। यह जगत हम लोग गुरु तो नहीं है किंतु वातावरण बनाने के लिए ऐसा किया है जैसे भक्ति की आलोचना हो सके भक्ति की कथाएं सुन सकें अन्य तो ये जो कथाएं हम कह रहे हैं ये कौन सुनेगा संसार के लोग खाते हैं जिनका कुछ आचरण नहीं है विचार नहीं है सबको अवलंबन ही नहीं किया है जिनको कुछ पता नहीं है भक्ति का वो लोग सुनेंगे वो लोग तो सुनेंगे। इसलिए ये एक वातावरण है जिसमें कि हम लोग ये सबको करेंगे जैसे जो कुछ भी करेंगे साधु साधु के अनुवर्त में करेंगे। यदि आप गोवर्धन दास करते हैं यदि आप वृंदावन में वास करते हैं आप 3 लाख हरिनाम करते हैं और साधु संघ नहीं है तो वो 0 हो जाएगा या कुछ फल देगा प्रेम फल नहीं देगा। और साधु संघ में हम जा रहे हैं शुद्ध साधु संघ उनके संग में रहें सभी कुछ वहीं पर हो जाएगा। जरूर हो जाए। तारकोशंडू जी कहाँ किस पर्वत पर रहते थे याद, यहाँ पर कि चार वृक्ष थे, बट पीपल पाकड़ और आम का, जिसमें रात में सोते थे किसी वृक्ष के नीचे ही आता है। हाँ बदल के नीचे हरी कथा होती, और चिंतन करते थे रसाल वृक्ष अर्थात आम का वृक्ष का, और पाकड़ के अंदर में या उसकी छाया में विश्राम करते थे और ध्यान इत्यादि कहाँ करते थे, और कथा करते थे पर्वत कहाँ सुमेरु पर्वत पर या कहाँ। राम की ऐसी सुंदर कथा हो रही है और शंकर जी कैलाश पर्वत पर श्रीमद् भागवत का प्रवचन कर रहे हैं, तो वो कैसा है? यही तो साधुओं के जहाँ भी रहे कृष्ण की कथाओं का रस, की कथाओं का रस साधन हो, उनके अंगत में भजन हो, साधन हो, ठीक। और यदि साधु संग नहीं है, साधु संग सर्वशास्त्र मात्र, साधु संग सर्व सिद्धि है, सर्व सिद्धि मैंने प्रेम तक सिद्धि हो जाएगी, और साधु संग नहीं है और ये सब साधन ये दुर्ल। साधु कौन है जो कृष्ण के तत्व को जानने वाला? एकांतिपुर में कृष्ण भक्ति है, कृष्ण के प्रति प्रेम है, लाख कष्ट आने पर भी प्रहलाद महाराज की भांति अटल अचल हिमालय की तरह में बने, उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम समस्या नहीं है, उनका मत बदल नहीं सकता, प्राण चले जाए क्या है जाए वैष्णव कुल की ये रीति है, वैष्णव कुल की रीति ये क्या है, प्राण जाए बरु भक्ति न जाए। बस कृष्ण के घाट पर राधा कुंड के घाट पर पानी पिएंगे भाई, ज्ञान के और मुक्ति वाले घाट पर नहीं पिएंगे, किसी को पता ही नहीं है जो मुक्ति का घाट कौन है, प्रेम का घाट कौन है, राधा जी का घाट कौन है, निराकार ब्रह्म का कौन सा घाट है ये पता ही नहीं, सब जगह को एक समान मानते, ये समझना जरूरी है। मैं तो ये सब भागवत समझ में नहीं आएगा जो कि बदलाया जा रहा है। तो गोपियां गोपियां कैसे कर रहे हैं उनका दैनिक चर्चा इसमें दिया। शाम को सवेरे जब जाते हैं वन में और जब लौटते हैं, गोपियां किस प्रकार से त्रिषित नयनों से उन्हें निहारती हैं, कभी घर के अंदर कभी बाहर में आती हैं जाती हैं, और पश्यन्ति सस्मित मुखम, अपने मुस्कान भरी मुख से और नयनों से कृष्ण को निहारते हैं, और कृष्ण क्या करते हैं उसको ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से ये दैनिक चर्चा है। कैसे घर का काम करती हैं, उनके लिए कोई समस्या नहीं, ये घर का काम नहीं क्या, सब तो उनके पास में दुख आते हैं जगत के टकरा कर चले जाते हैं। भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति में और साधन भक्ति में अंतर है, साधक भक्त को दुख आक्रांत कर लेते हैं, उसको उसको ये अशांत कर देते हैं, भाव भक्त में दुख आते हैं किंतु दुख आते हैं उसको अभिभूत नहीं करते, और प्रेमा भक्ति वाले को दुख ही नहीं, मध्यम अधिकारी उसका सामंजस्य कर लेगा और दुख को दुख नहीं समझता, दुख से ऊपर समान समझता, और साधक साधक में भी तरह तरह की समस्याएं आ जाती है, उनको ये बड़ा मालूम नहीं है कि संसारिक बातों को दुखों को कष्टों को कैसे हम शामिल ले सकते हैं। जब ये कला आने लगती है तो वो मध्यम अधिकार में प्रवेश करता है, नहीं तो वो कनिष्ठ अधिकार के लिए। गोपियां गोपियों की बात समाप्त करके चारों मूर्छित से युद्ध युद्ध में चारों मूर्छित मारे गए, उनके जितने कंस के भाई थे वो सब लोग आए और मारो मारो पकड़ो पकड़ो तब करके कृष्ण पर एक साथ में आक्रमण किया, और बलदेव जी ने वही हाथी का दांत और कृष्ण ने हाथी का दांत लेकर उनके समस्त भाइयों को और जितने पहलवान जो और जो आए थे चारों मुष्टिक के बदले में अभी क्या 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 प्रतिबल सबल और यह सब को मार गिराया और बाकी जो है सब भाई। इसके बाद में कृष्ण ने कंस का यह सौ लेकर के ध्रुव घाट पर उनका शब्द सत्कार जैसा करना चाहिए संस्कार किया और विश्राम घाट में आकर उन्होंने स्नान किए सब लोगों के साथ में और बताशम पीला पर
किया।
यह कौन महीने में हुआ था? कार्तिक महीने में छठ ठंड आता है इसलिए ऊंचे चीले पर चढ़ गए जो सूर्य वहाँ पर उनको ताप मिले और सम को गत किया अतर दूर किया और उसके बाद में उतर करके आए महाराज उग्रसेन हाल में अभिषेक का समस्त सामग्री लेकर के आए। कोई भी राजा के मरने के बाद में कोई भी संप्रदाय किसी गुरु के प्रकट होने पर वो जगह खाली नहीं रहती उसी दिन उसी क्षण में उसको पूरा करना होता है 24 घंटे के या कुछ घंटे के अंदर उसको पूरा करना होता है। बिना राजा का राज्य नहीं रहेगा और संप्रदाय भी बिना गुरु के नहीं रहेगा इसलिए वैष्णव में आचार्य के गत होने पर साथ ही साथ में उनका अंदर में समाधि या जल समाधि या कुछ किया और करने के बाद में आचार्य को एक उनके बदले में अभिषेक कर दिया। यदि पूर्ण रूप से अभिषेक नहीं हुआ भी तो काम चलाओ प्रतिनिधि काम चलाओ आचार्य या काम चलाओ राजा या काम चलाओ प्रधानमंत्री ये जरूर करना पड़ेगा इसलिए नहीं तो वो भ्रष्ट हो जाएगा वो संप्रदाय भी भ्रष्ट हो जाएगा इन्हें साथ ही साथ में करना। इसलिए कृष्ण ने देखा कि कंस तुम्हारा गया मेरा बेटा इसलिए सोने के थाल में चमर व्यंजन चमर इत्यादि लेकर के और अभिषेक की सारी सामग्री लेकर के मंत्रियों के साथ में ब्राह्मणों के साथ में कृष्ण के निकट पहुँच कर तो उसका अभिषेक करना चाहा। कृष्ण ने साथ ही साथ उनसे वो ले ली और ले करके ब्राह्मणों के जय घोष में और मंत्रियों को से समझा करके और स्वयं राज तिलक अपने हाथों से उग्रसेन को कर दिया। नहीं आपके रहते पुल्ठों पर रहते हुए मैं कभी भी राजा नहीं। और दूसरी बात उनको अभिशाप था अभिशाप नहीं बल्कि वरदान इनका कोई भी वंश में कोई राजा नहीं होगा क्योंकि कृष्ण इसलिए कृष्ण स्वयं उनके वंश में आए हैं उनकी भक्ति देख करके द्रवित होकर के। अरे जो समस्त विश्व ब्रह्मांड के ही यहाँ तक की चीज जगत के भी समस्त ईश्वरों के ईश्वर हैं ये ब्रह्मांड की तो बात क्या चीज जगत के ही मूल स्वामी हैं सर्व कारण कारण है उनको जगत का संस्कार राज्य लेना उनकी भी क्या बात है इसलिए इसे सभी काम निर्वाह हो गया। उन्होंने कहा बलदेव जी हैं और हम हैं सारे विश्व के राजा लोग आपके चरणों में उद्धवर में बाहर लेकर के प्रणाम करेंगे जो नहीं करा तो उसे हम आक्रमण करके उनको हम पकड़ लाएंगे और आपके चरणों में झुका देंगे आप निश्चिंत रूप से कोई डरने की बात नहीं है। ऐसा करने के पश्चात घर में बड़े प्रसन्न से लौट गए देवी जी और वसुदेव जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए वही चतुर्भुज रूप वही स्वयं भगवान ये नारायण स्वरूप है इनको इन्होंने हमको बल दिया था कि पुत्र के रूप में मैं ही आऊंगा हमारे समान का दूसरा कोई नहीं है इसलिए यह स्मरण करके और हाथ जोड़ करके स्वाव स्तुति कर कृष्ण ने देखा कि तुम्हारी लीला सब गड़बड़ हो जाएगी जो माया को इशारा किया और इशारा करके अवसाएं देवी जी की गोदी में बैठ गए और उधर में बलदेव जी देव जी के चरणों में गिर गए पिताजी और ये कहा मैया एक सेकंड के अंदर में जोग माया के द्वारा मुक्त होकर के वो सब भूल गए और ये दोनों रोने लगे ये बेटा तुमको मैंने बचपन से ही तुमको वहां पर दे दिया गोकुल में तुम्हारी कोई सेवा कृष्ण प्रसन्न होकर के फिर राज्यसभा में आए कुछ नहीं नंद बाबा बैठे हैं अभी कहाँ बैठे हैं जहाँ पर की महाविद्या जी का स्थान है मथुरा पहले घर में थी पंच का कारागार इधर उधर ही सारी वही थी। और जमुना जी वैसे बहती थी, नंदावाप ने छकड़े को लेकर के और सखाओं को लेकर के श्रीदान सुबर मधुमंगल इत्यादि को लेकर के वहीं पर खड़े थे। शाम हो गई, कृष्ण और बलदेव जी वहीं पर पहुंचे। देखा नंद बाबा बड़े दुखी, आंखों में आंसू छल छला और कृष्ण को देखते ही आंसू अर्जुन देखने लगे। कृष्ण बलदेव जी लेकर के एक दाहिने गोदी में एक बाएं गोदी में बैठे, बलदेव जी दाहिनी गोदी में और कृष्ण जी बाएं गोदी में, क्योंकि बलदेव जी बड़े हैं। कृष्ण भी रोने लगे, बलदेव जी भी रोने लगे, ये भी रोने लगे। बलदेव जी ने कहा बेटा आज याद आई, आज याद आई, आज याद आई, तीन दिन हो गए मैं भूखा प्यासा यहाँ पर बैठा, हमारा मित्र वसुदेव, हमारा भैया वसुदेव, ये भूल गया है। देवकी भी गई, सारे लोग भूल गए और तुम दोनों भाई भी भूल गए। एक बार तुम हमें देखने के लिए नहीं आए, नंद जी ने पानी पिया कि नहीं, बाबा ने पानी पिया कि नहीं, और तुम घर में रह गए, क्या तुम लोगों की, तुम लोगों का विचार क्या है? विचार तो तुम्हारे बड़े प्रौढ़ हैं, किंतु बतलाओ तुम लोगों की इच्छा क्या है, मेरे साथ में चलेगा या यहीं रहेगा? कृष्ण ने कहा पिताजी यहाँ के जितने सारे लोग हैं, देवी वसुदेव जी और सारे लोग, तो हमको कहते हैं कि तुम हमारा पुत्र है। हम मथुरा के उद्धव और क्रू और महाराज उग्रसेन और यहाँ की सारी प्रजा है और गर्गाचार्य इत्यादि जो बड़े बड़े ऋषि हैं, वो कहते हैं तुम बस देव जी के लड़के हो, देवकी के लड़के हो, मेरा मन ऐसा स्वीकार नहीं करता, ये सभी कहते हैं और इसलिए जबरदस्ती रोक रखा, हमें आने नहीं दिया, इसलिए आने में देरी हो गई। इतना सुनते ही नंद बाबा और जोर से रोने लगते। बलदेव जी ने कहा देखिए पिताजी, मैं वसुदेव जी को अपना पिता नहीं मानता, हमारे पिता आप ही हैं, बचपन से जब से हमने देखा आप ही को देखा। यदि गर्गाचार्य भी ऐसा कहते हैं, मथुरा वाले कहते हैं, वसुदेव और देवकी जी भी यदि कहते हैं कि तुम हमारा पुत्र हो, मैं इसे मान नहीं सकता। क्यों नहीं मान सकता? पिता बहुत तरह के होते हैं, जन्मदाता पिता, शिक्षा पालन पोषण करने वाला, शिक्षा देने वाला, राजा, ये सभी पिता, स्त्री का पति, स्त्री का पिता, प्राणों की रक्षा करने वाला पिता, और जिसने अपनी लड़की की शादी जो करता है वो भी पिता के पुत्र। इसलिए आपने हमारा पालन पोषण किया, यदि इनका पुत्र भी लोग कहते हैं तो उन्होंने तो त्याग कर दिया हमारा बचपन से ही, जो खुद ही असमर्थ है, जो हमारी हमारी रक्षा नहीं कर सकता है, प्राण नहीं कर सकता है, तो वो पिता क्या कर सकता है? इसलिए आप ही ने हमारा सपालन पोषण किया है, मैं आपको छोड़ करके मैं यहाँ नहीं रहूंगा। नंद बाबा ने कहा देखो बेटा ऐसा मत करो, कृष्ण को तो मेरे साथ में लेकर के जाता हूँ, हमारा बेटा है, तुम उनके बेटे हो, किंतु तुमको किंतु तुम यहाँ कुछ दिन रहो, आज यदि नहीं रहेगा तो ये तो मारे जाएंगे, क्योंकि उनके छह बेटे मारे गए हैं, कंस ने मारा और तुम उनके सातवां पुत्र हो, सातवां माने तुम ही उनके पुत्र हो, कोई पुत्र उनका बचा नहीं, यदि तुम यहाँ नहीं रहेंगे तो मारे जाएंगे, इसलिए बेटा तुम यही कर रहे हो, कृष्ण के साथ तुमको अच्छा है, बीच बीच में कृष्ण के यहाँ तुम आ जाना, मिल जाना, हमसे मिल जाना। नहीं नहीं पिताजी ऐसा आदेश आप मत दीजिए, कृष्ण को छोड़कर के मैं एक सेकंड भी बच नहीं सकता, नहीं रह सकता, आशा आदेश। नंद बाबा ने कृष्ण की तरफ में देखा, क्या करना चाहिए, उनको तो याद है ना इंद्र पूजा के समय में अच्छी सलाह दी थी ना, जो इंद्र का पूजा किस लिए करते हैं, गिरिराज जी का पूजन कीजिए, उन्होंने उनकी बात मानी और जब जब कोई बात हुई सभी को बुला लिया, ये कौन क्या सब इंद्र पूजा की बात याद है, जब जब कुछ या बात होती है तो बुला लेते हैं नंद बाबा,
उसे पूछते हैं, परामर्श करते हैं, बिना कृष्ण से परामर्श किए हुए छोटा सा बच्चा होने पर भी 10-12 वर्ष का तो कुछ नहीं था, जो कुछ होता है कृष्ण से परामर्श अच्छा हुआ, क्योंकि गोवर्धन को भंग करते हुए देखा, काली व्रत में कूदते हुए देखा, और सबसे बड़ी बात देखी ये कृष्ण जबकि नंद बाबा को वरुण लोक में ले गए तो कृष्ण वहां पर पहुंचे और देखा वरुण जी उपहार लेकर के कृष्ण की परिक्रमा करके इस स्तुति कर रहे हैं और उनके नाते हमारी भी पूजा करने लगे। कृष्ण का इतना प्रभाव, हमारे बेटे का प्रभाव बुद्धिमान जरूर है। एक दिन उन्होंने देखा काली हरद के किनारे जिस दिन काली का दमन किया रात में वही पास में अभी जिसका नाम है दवान और कुंड, वहीं पर सब ब्रजवासी लोग सो गए। किस लिए? कहीं ये डर था घर में जाएंगे वहां पर आग न लगा दे या कुछ न कर दे, इसलिए डर के मारे चुपचाप किसी से कहे बिना उसी जंगल में रह गए और कंस ने उसमें आग लगा दी चारों तरफ। कृष्ण ने सबके सामने देखते देखते उस आग को ऐसे काम कर दिया, साधारण बालक नहीं है, क्योंकि नारायण का इसमें कभी कभी आवेश होता है, ये नारायण भगवान नहीं है किंतु इसमें न जाने क्यों नारायण का आवेश है, इसलिए अलौकिक कार्यों को करता है, इसलिए इसका परामर्श लेना उचित। कृष्ण की तरफ में देखा, कृष्ण ने कहा पिताजी एक बात मैं बताऊं, बताओ बेटा, यदि मैं कहता हूँ ऐसा किया जाए तो इसमें क्या हानि या लाभ है, इसको विचार किया जाए तो भी मेरे बिना नहीं रह सकता और मैं भी बिना बलदेव जी के मैं नहीं रह सकता, जीवित नहीं रह सकता, अतः ये संभव नहीं है कि मैं आपके साथ चलूँ और बलदेव यहाँ पर रहे। यदि हम दोनों भाई जाते हैं तो जैसे भी हो बलदेव जी तो आपके भैया या मित्र हैं, बलदेव जी को कोई लड़का इत्यादि नहीं, ये तुम्हारे जाएंगे तो आप तो इतने मनस्वी और उपकारी हैं बिना किसी लाभ के हानि के आप सबका कल्याण करना, इसलिए यदि आप आदेश दे दें तो मैं 2-4 दिन यहाँ और ठहर जाऊं, बलदेव जी का भी मन लग जाएगा और साथ साथ में यहाँ के लोगों को भी सांत्वना मिल जाएगी और 2-4 दिन के बाद में हम परसों लौटें, इसमें क्या फायदा। उनका तो एकदम हृदय धड़कने लग गया, किंतु कृष्ण ने कुछ योग माया का अवलंबन लिया। कृष्ण ने मौन रहे वो नंद जी, कृष्ण ने अवसर दे करके सोने के आभूषण और रेशमी वस्त्र इत्यादि ये सब चीजों को लेकर के कहा ये मेरी मैया को दे देना और मैं 2-4 दिन चार करके मैं आ रहा। नंद बाबा का तो चित्त सन्न रह गया हृदय, उन्होंने कहा मैं अपने लड़के को बेच करके जाऊं, ये आभूषण जो दे रहा है और कपड़े इत्यादि दे रहा मैया इसकी लेगी, कहीं ये बच्चे को तू बेच करके चला, तुमको उसके प्रति तरीके भी मोह ममता नहीं। उन्होंने कहा मेरे द्वारा ये कैसे संभव होगा जब मैं ये बोलूं, किंतु कृष्ण ने कहा इसे बात हो तो उनके बात को भी मानना भी है। उन्होंने उनके गोदी में रख दिए कपड़े अलंकार सारे और कृष्ण चुपचाप हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। इसके बाद में कहा कि पिताजी जल्दी से जाना है घर, नहीं तो वहां पर भी ब्रज उजड़ जाएगा, मेरी गैया सारी मर जाएंगी, बछड़े दूध नहीं पिएंगे, मैया भी मर जाएगी, इसे आपका जाना जरूरी है, अधिक दिन नहीं कल परसों में मैं जरूर आ जाऊंगा। पिताजी से भी उन्होंने पति किया। इसके बाद में बंदे ये नंद बाबा रात में गाड़ी जोड़ी और जो करके सखाओं को साथ लेते जिनको लेकर के आए रोते रोते ब्रज में गोकुल में वो किया बैठे गाड़ी में, गाड़ी चल दी। बैल तो अपना घर पहचानते हैं, बड़े आराम के साथ में चेदी के साथ में अपने घर में चले। इधर में ये विचार करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी अपने टीका में, इस जगत में प्रेम ही सर्वोच्च सर्वोच्च भाव, यह प्रेम ही कृष्ण को गोपियों को सखाओं को सारे जगत को नचाता है। प्रेम के अभाव में ही हम बद हुए हैं, प्रेम होने पर ही मुक्त हो सकते हैं, कृष्ण की सेवा को पा सकते हैं। यदि प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। प्रेम के भी तात्पर्य होता है, कुछ थोड़ा प्रेम, अधिक प्रेम, अधिक और भी अधिक प्रेम, और भी अधिक प्रेम, सर्वोच्च प्रेम। जगत में जितने प्रकार के प्रेम हैं उनको साधारण रूप में पांच भागों में विभक्त कर दिया, जिसमें शांत दास्य सप्त वात्सल्य पांच विभाग सारे प्रेमों को विचार कर, जिसमें ऐश्वर्य की अत्यंत अधिकता है। यहाँ पर भी भगवान की सेवा करने की कोई जरूरत ही नहीं समझते, उनको सर्वव्यापी अनंत भूख प्यास रहित जन्म